भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके हरे कृष्ण। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है और इतना अनुकूल है तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ा कृष्ण कथा की जो महिमा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्ति भागवत से जब पुस्तक भागवत के बारे में सुनते हैं तो समझ में आता है कि भागवत की महानता क्या है या कृष्ण कथा की महानता क्या है। तो आज हम दशम स्कंध से पढ़ रहे हैं जहां परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से और कृष्ण कथा सुनने की आतुरता से कुछ शब्द कह रहे हैं। इस समय जब दशम स्कंध चल रहा है परीक्षित महाराज को ऑलरेडी शाप मिला हुआ है कि 7 दिन में वो शरीर छोड़ने वाले हैं और 7 दिन में शायद 5-6 दिन तो हो गया होगा। दशम स्कंध आ गया, दशम स्कंध के बाद 11वां 12वां और मालूम है कि अभी 2 दिन में मृत्यु आने वाली है, पर फिर भी उनके शब्दों में ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको उसके बारे में कोई चिंता है। निश्चिंत और निर्भय कृष्ण कथामृत का पान करने में कहते हैं सुखदेव श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़े विस्तारित रूप से दोनों वंश सोम सूर्यो, सूर्य वंश है और फिर चंद्र वंश है, पर यहां सोम सूर्यो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी आतुरता बढ़ रही है, अभी भगवान श्री कृष्ण की कथा होने वाली है। तो कृष्ण जो है चंद्र वंश में आए, इसलिए पहले बोलते सोम सूर्यो और दशम नवे स्कंद में प्रभु रामचंद्र की मतलब सूर्य वंश की कथा हो गई है, पर वहां एक झलक उन्होंने एक ट्रेलर 2 ही श्लोक में कृष्ण के बारे में बता के खत्म कर दी, तो उनकी आतुरता बढ़ गई। अभी सोम सूर्यो आपने बताया है और ऐसे राजाओं की राज्ञां च उभय वंशानां, दोनों वंशों के महान राजाओं के बारे में बताया है। चरितं परम अद्भुतं, अद्भुत उनकी चरित आपने सुनाया है। और आप कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमं तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि सप्तम, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मुनि सप्तम मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सारा ज्ञान उनको है, सारे वेदों का ज्ञान उनको पूर्ण रूप से, ना सिर्फ बुद्धि से जानते पर उन्होंने उसे साक्षात्कार किया है। और सत यानी भक्त, भक्तों में भी आप श्रेष्ठ हो, तो मुनि सप्तम आपने यदुवंश यदु के बारे में और उसके वंश के बारे में ऑलरेडी बता चुका है, बहुत बताया आपने, जो बड़े धार्मिक थे और धर्मशीलस्य। अब कृपया उस विष्णु की कथा को सुनाओ जो कृष्ण के बारे में, जो यदु वंश के शिरोमणि हैं और अपने विस्तृत रूप बलदेव के साथ प्रकट हुए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। कहते हैं कि अवतीर्य यदुर्वंशे, यदुवंश में अवतीर्ण होने के बाद भगवान भूत भावन, भगवान श्री कृष्ण भूत भावन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भूत भावना, भूत जो जीवों को भावना में डुबा देते हैं अपने कथा से, भाव प्रेम भाव इत्यादि इसमें से जो डुबा देते हैं ऐसे उनको भावन, भूत भावना। कृतवान यानी विश्वात्मा, जो जो उन्होंने अद्भुत चरित की, तानिनो वद विस्तरात, वो ऐसा नहीं कह रहे कि अभी दो दिन बाकी है पता नहीं कब मर जाऊंगा जल्दी शॉर्टकट बता दो, नहीं इस तरह कोई चिंता नहीं अब बोलते जाओ बस। भूत भावना, उस भावना में मैं पूर्ण रूप से डूबना चाहता हूं कृष्ण कथा अमृत में। अमृत जो अमृत का पान कर रहा है उसे क्या डर है फिर, कृष्ण कथा अमृत वो भी ऐसा मामूली स्वर्गलोक का अमृत नहीं। दशम स्कंध में वर्णन आता है जब अघासुर को, अघासुर के मुंह में सारे ग्वाल बाल घुस गए, अघासुर को देखकर देवता लोग जो अमृत हर रोज पीते हैं वो लोग डर रहे थे, पर जो ग्वाल बाल थे कृष्ण के साथ वो अंदर प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण स्मरणामृत कथामृत नामामृत हर रोज पान कर रहे हैं, तो उनको कोई डर नहीं था, वो आराम से घुस गए निर्भय होकर निश्चिंत होकर। ये लक्षण है कृष्ण कथा स्मरण करने का कि व्यक्ति पूर्ण रूप से उस समय के लिए कम से कम सारे जो लक्षण हैं रजोगुण और तमोगुण के, कम से कम उस समय जब तक हम कथा सुन रहे हैं उस समय तो नहीं रहेगा, फिर से उठ जाते तो वापस शुरू हो जाता है, पर धीरे 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 एक स्तर आएगा जब शायद चाहे उठ के गए फिर वापस अगले दिन भागवत आने तक भी उसको मेंटेन कर पाएंगे। और अब यहां बता रहे हैं क्यों मैं ये सब सुनना चाहता हूं, क्यों मैं कृष्ण कथा भी सुनना चाहता हूं। कहते हैं निवृत्त तर्शैर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विदा पशुग्धम्। निवृत्त तर्शैर, तर्शैर तर्श तर्श मतलब तृष्णा, इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति प्यासा है, अलग अलग प्यास है सबको, किसी को धन संपत्ति की प्यास है, किसी को भोग करने की प्यास है, किसी को एक स्थिति पाने की प्यास है, किसी को एक क्या बोलते हैं पोजीशन इन सोसाइटी, इंद्र बनना या चंद्र बनना या ब्रह्मा जी बनना, हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार की चीजों के पीछे प्यासा है, पर अज्ञान के वश उसे ये नहीं मालूम कि ये चीजें उसको प्यास को नहीं बुझा सकती, क्योंकि प्यास जो है वो आत्मा का है, और ये शारीरिक और मन के स्तर पर जो प्यास है वो शरीर और मन की प्यास को क्षणिक कुछ समय के लिए बुझा सकते हैं, पर आत्मा का प्यास जब तक नहीं बुझेगा तब तक आदमी प्यासा ही रहेगा, तब तक वो प्यासा रहेगा, और वो प्यास जो है वो कृष्ण कथा ही बुझा सकती है, उस प्यास को तृप्त आदमी तृप्त हो जाएगा। अर्जुन पूछता है भगवत गीता में एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्त केशव स्थित किम प्रभाषित किम आसित ब्रजेत किम। तो भगवान बोलते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पात मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। सबसे प्रथम लक्षण है एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का कि वो तुष्टस्य आत्माराम, आत्माराम मतलब अपने आप में वो संतुष्ट है, क्योंकि वो इस हरिकथामृत का पान कर रहा है, स्थित है वो। तो हरेक व्यक्ति जो है इस तृष्णा के पीछे पड़ा हुआ है, पर निवृत्त तर्शैर, पर एक भक्त जो है वो निवृत्त तर्श है, निवृत्त है इस तृष्णा से, निवृत्त है वो। निवृत्त पर शरीर उपगीयमाना, उसका लक्षण क्या है जो इस तृष्णा से मुक्त है, उसका लक्षण क्या है? उपगीयमाना, गीयमाना मतलब गाते रहता है हमेशा, उपगीयमाना मतलब ऊपर का दो शब्द दो अर्थ बताया जा सकता है। उप मतलब निरंतर जो गाता है, या उप का मतलब है तीव्रता से जो गाता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च गृहवृदाः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। महात्मा का लक्षण बताते हुए गीता में कहते हैं भगवान सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे कीर्तन में लगा रहता है वो। कीर्तन मतलब क्या? भजन करता हुआ मृदंग, लेकिन कीर्तन का मतलब है उसके सारे कार्य जो भी कुछ कर रहा है वो भगवान की कीर्ति गान। जैसे युधिष्ठिर महाराज पूरे साम्राज्य को चला रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो कीर्तन है उनका। हरेक का अपना अपना कीर्तन, मतलब हरेक अपने कार्यकलापों से भगवान की यश जो है वो बता रहा है। सो उपगीयमानात जो निरंतर और बड़ी तीव्रता से इस कृष्ण कथा का, कृष्ण के गुणगान का, कीर्ति का यश बढ़ा रहा है। निवृत्त तर्शयर उपगीयमाना, और क्यों मैं सुनना चाहता हूं, परीक्षित महाराज कहते हैं भव औषधा, ये भव रोग का औषधि है। भव मतलब फिर से, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम। ये भव जैसे समुद्र में लगातार लहरें आते रहती हैं, तो इसको भव सागर बताया गया है भौतिक संसार में। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ, अब करोड़ों साल पहले ही जाके समुद्र के सामने खड़े होंगे तो लहरें आते रहेंगी, अभी भी आते रहेंगी, अब 5 साल के बाद जाओ फिर भी लहरें आते रहेंगी, लहरें कभी खत्म नहीं होती है। तो ये भव सागर की जो लहरें हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, तो भव औषधात, ये कृष्ण कथा जो है भव सागर की औषधि है। जो ये औषधि पी लिया कानों के द्वारा, उसके हृदय में अगर ये हृदय की जो बीमारी है, और भाव सागर क्यों है ये, क्योंकि अभी तक इच्छाएं हैं भगवान से अलग होकर भोग करने की, तो वो इच्छा जो है वो इस सागर को बीमारी यहां है हृदय में। तो ये जो औषधि है भव रोग की औषधि, ये कानों के द्वारा कृष्ण रसायन ये हृदय में प्रवेश करता है, और ये मूल कारण है जैसे कल हमने चर्चा किया, तदा रजस्तमो भाव कामलो भारयश्चये चेत एतेर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति, तृप्त कर देता है आत्मा को हृदय। तो फिर और दूसरी चीजों की प्यास नहीं रहती, क्योंकि पूर्ण रूप से तृप्त हो गया आदमी। तो भवौषधात, इसीलिए कृष्ण कथामृत को भवौषधि बताई गई है। भवौषधात श्रोत्र मनोभिराम, साधारण तो भौतिक संसार की जो दवाई है बहुत कड़वा होता है, नाक बंद करके और बच्चों को कुछ खिलाना पड़ता है, ये खा गया तो ये मिलेगा, तुमको ये दूंगा वो दूंगा मिठाई दूंगा, पहले खाओ, नाक बंद करो कसा मुंह में, कड़वा है। पर ये कृष्ण कथा जो है मनोभिराम, कान को भी बहुत आनंद और मन को भी बहुत आनंद देता है। सिर्फ कान से आनंद लेना चाहिए, मन से भी लेना चाहिए। कान से गया और अगर मन में नहीं स्पर्श किया, मन को आनंद नहीं दे रहा, तो अफकोर्स अभी हमारे लिए औषधि है। श्री कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य रुचिकाम, क्योंकि अविद्या से ढका हुआ है इसीलिए हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर ये जीवा के ऊपर एक रसगुल्ला रखेंगे, बहुत मीठा है रसगुल्ला, रखते ही बहुत आनंद आता है, पर अगर इस जीवा के ऊपर एक प्लास्टिक बैग लगा दे और एक रबर बैंड बांध दे पीछे, एक नहीं दो नहीं 6 प्लास्टिक बैग लगा दे और उस प्लास्टिक थैली के ऊपर एक रसगुल्ला रखे, तो कुछ आनंद नहीं आता उसको, क्योंकि जीवा को स्पर्श नहीं हुआ अभी तक। इसी तरह से कृष्ण नाम कृष्ण कथा जो है वो हृदय को बहुत, हृदय के लिए अमृत है, पर अभी ढक गया है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णा नले गच्छ। आवृतम, ये आवृत हो गया हमारा आत्मा, काम को लोग छेद ऐसा थैली से ढक गया, ऊपर से हम लोग कृष्ण का भांग रस का आस्वादन नहीं हो रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा थोड़े एक एक करके। और जब जीवा को स्पर्श हुआ, इसी तरह से कृष्ण कथा जब आत्मा को स्पर्श होती है तो दिव्य आनंद का अनुभूति। कृष्ण मनोभिरामा, मन पूर्ण रूप से अभिरामा रमण करने लगता है। का उत्तम श्लोक गुण अनुवादात, उत्तम श्लोक भगवान का दूसरा नाम है उत्तम श्लोक। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान में आप जो भी श्लोक लिखो उसमें टूटा फूटा हो, मतलब व्याकरण ठीक नहीं हो, फिर भी वो उत्तम श्लोक है। पर अगर और किसी और के बारे में, कभी कभी राजा के घर में राज कवि होते थे और उनका काम था राजा के गुणगान में बहुत सारे श्लोक की रचना करना, और राजा सुन के आनंद लेता था, आप इतने महान हो, आप इतने सारे राज्यों को जीते हो, आप इतने शक्तिशाली हो, चलो एक सोने का हार दे दो इसको। तो उसको उत्तम श्लोक नहीं बोलते। क्यों? उत्तम मतलब उद्गत तम, जो तमगुण से परे है, इस भौतिक संसार से परे है, वो तो भगवान ही है बस। और जो श्लोक भगवान का गुणगान करते हैं वो उत्तम श्लोक है, क्योंकि एक्चुअली जो भी गुणगान है वो भगवान के गुण जो है किसी के द्वारा प्रकट हो रही है बस। अंततः यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवन। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सुंदर कृष्ण कथा, इतने बड़े हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है? और जिस हृदय में करुणा नहीं है, जिस हृदय में दया नहीं है, वो तो पत्थर के समान कड़क है। अब पत्थर के ऊपर आप अमृत डालो या पानी डालो, कुछ टिकेगा नहीं, सब बह जाएगा। पशुपतिनाथ जिसका हृदय कठोर पत्थर जैसा है, उस व्यक्ति को आप कृष्ण कथा सुनाना पत्थर के ऊपर पानी डालने के बराबर है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बोले क्या है? कुछ नहीं। दूसरा अर्थ है पशुपतिनाथ, जैसे पशु मतलब जीव हम सब, और पशुपतिनाथ मतलब पशुओं को मारना, पशुओं को मारना का दूसरा तरीका भी है, दूसरा ये भी है, कभी कभी वैदिक यज्ञों में पशु को मार के बलि चढ़ाया जाता है, वो भी पशुपतिनाथ है, जो पशु को यज्ञ में डालते हैं। किस लिए? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि हमको स्वर्ग लोक में प्रवेश मिल जाए, ताकि हम ज्यादा भोग करें या ज्यादा स्वर्ग जैसे इंद्र की जो ऐश्वर्य है वो मुझे प्राप्त हो, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करके उसको पशु में डाल देते हैं, पशु को यज्ञ में घनाक मार देते हैं। तो इसीलिए तो भगवान का अवतरण हुआ, निंदसी यज्ञ विधे अहहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरि। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, निंदसी यज्ञ विधे, वो यज्ञ जिसको तथाकथित ब्राह्मणों ने वो यज्ञ की विधि को लेकर पशु की इतनी हत्या करने लगे वो लोग, के निंदसी यज्ञ विधे अहहा श्रुति जातम। और ये कहां लिखा गया है? ये श्रुति जातम, श्रुति में लिखा गया है, यज्ञ की विधान जो है ये सब कर्म कांडीय विधान में लिखी गई है, और उसकी चरण चिन्हों में चलते हुए इधर कीप लाइक दिस थोड़ा उसने श्रुति मतलब वेदों में, वेदों में वर्णन है ये सब यज्ञ का, कर्मकांडी यज्ञों का। पर जब उसका दुरुपयोग करके इस ब्राह्मणों ने इतने सारे पशु घात मतलब हिंसा की, तो एक उपधर्म सिखाने के लिए, अहिंसा का उपधर्म सिखाने के लिए सदय हृदय, सदय दया से भरी हुई हृदय को लेकर दर्शित पशु घातम, ऐसे पशु को ऐसा मतलब मारते हुए देखकर केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे,
तो बुद्ध देव के रूप में आकर उन्होंने बोले किस लिए कर रहे, बोले आपके श्रुति में लिखा हुआ है और वेदों में लिखा हुआ है। तो बोले मैं वेदों को ही नकारता हूं, अगर ऐसा चीज लिखा हुआ तो मैं वेदों को नकारता हूं। इसलिए हम देखते हैं कि हम बुद्ध को अवतार मानते हैं भगवान केशव का, कृष्ण का, और अपने अल्टर में रखकर पूजा नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मेरा दिया हुआ वेद है, इसको जो नकारता है वो बोनाफाइड नहीं है, अधिकृत नहीं है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो भगवान है। जैसे कभी कभी वॉर, अभी लड़ाई चलता है, तो लड़ाई में इमरजेंसी के लिए सारे मेडिकल के नियम तोड़ देते हैं। नहीं तो अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करना है तो पहले एनेस्थीसिया देना जरूरी है, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन नहीं कर सकते। काट दिया, हाथ पैर काट दिया और ऐसा निकाल रहे उसको, तो वो देख के ही मर जाएगा। पर अगर लड़ाई में किसी को अगर पेट में या कहीं एक ये चला गया, गोली चला गया है, और वो लॉ बुक अपना मेडिकल बुक खोलेगा और बोलेगा ऐसे व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके और इसमें देना चाहिए, क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया देना चाहिए। और हॉस्पिटल किधर है भाई? 7 किलोमीटर दूर है, बस इधर ही है। तो 7 किलोमीटर पहुंचे, अभी 7 मिनट भी नहीं रहने वाला, ये तो अभी मरने वाला है। तो उस समय मेडिकल बुक बंद करो, 4 लोग पकड़ो, मुंह बंद करो, घुसाओ और निकालो उसको गोली को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गया और वो अभी एक्सपर्ट हो गया है, तो जहां भी जिसको भी कोई तकलीफ हो रहा है, चलो 4 लोग पकड़ो, मुंह बंद करो, खोलो। वो उस समय के लिए ठीक है, अभी लड़ाई बंद हो गया, अभी फिर भी वही चलाओगे तो फिर वो बोलेंगे गलत बात है। तो उस समय के लिए इमरजेंसी था वो बुद्ध अवतार, इमरजेंसी अवतार था वो। बोले अभी के लिए कम से कम, जैसा मेन रोड जब टूट जाता है तो एक बाईपास लेते हैं। तो बाईपास का मतलब नहीं है कि बाईपास को करते करते लंबा खींचेगी, नहीं, बाईपास वो समय के लिए बस। एक बार मेन रोड ठीक हो गया तो बाईपास को छोड़ दो, अपने आप वो घास बढ़ जाएगा, उसमें मेन रोड चालू करो। तो निंदसी यज्ञ विधे आहा श्रुति जातम सदय हृदय। अरे ऐसे लोग पशु का हिंसा कर रहे हैं। दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरि। और ऐसे व्यक्ति को, इसलिए हम देखते हैं ऐसे व्यक्तियों को इतने वो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम उसमें आ सकते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो एक है पशुघात, मतलब जो पशु को मार देता है। दूसरा है जो यज्ञों के रीति रिवाजों में इतना फंस जाता है कि असली यज्ञ का उद्देश्य क्या है वो भूल जाता है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंति सुमेधसा। यज्ञ का मतलब है अंततः भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर वो नहीं हो रहे, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर ठीक नहीं। और तीसरा अर्थ है पशुभनाथ, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गिलोतार सेई पशु बड़ो दुराचार। आचार्य कहते हैं से संबंध नाही जार, जो नित्यानंद के प्रभु के साथ जिसका संबंध नहीं है, जो भगवान के साथ जिसने अपना संबंध स्थापित नहीं किया, जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, वही प्रयोजन है जीवन का। वृथा जन्म गिलोतार, उसका मन जीवन ऐसे व्यर्थ चला गया, आया राम गया राम। अरे ऐसे कुत्ते बिल्ली कितने सारे सड़क के नीचे ऐसे मर जाते हैं, कभी 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 टायर के नीचे, कितने चींटी मर जाते हैं, न्यूज़पेपर में उनका नाम नहीं आता, आए और गए। ऐसे ही सिर्फ द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु आए और गए, ऐसे भी जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, वो भी पशु है। यानी वो पशु जो आत्महनोजनाः, ईशोपनिषद कहता है कि जो सुइसाइड कर लेता है, आत्महत्या। अभी दो प्रकार के आत्महत्या होते हैं। एक आत्महत्या होता है जो देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं समझ के देह को मार देता है। कितने लोग ऊपर से छलांग मार गया, या कोई बिल्डिंग से, या जहर पी लिया, इसको कहते हैं आत्महत्या, मतलब शरीर की उसने हत्या कर दी। पर वो व्यक्ति जो समझता है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ और एक्चुअली अभी मैं शरीर में हूँ, एक बार मैं मुक्त हो जाऊंगा तो भगवान में लीन हो जाऊंगा और मैं हम एक हो जाएंगे, जो ऐसे मायावाद, जो भगवान के लीला को माया समझता है, भगवान के रूप नाम इत्यादि को माया समझता है, क्षणिक समझता है, वो भी एक मायावाद जो है वो आत्महनो जनाहा, वो अपने अस्तित्व को खो बैठना चाहते हैं, मुक्ति यानी भगवान में लीन होकर अपने अस्तित्व को खो बैठना, ऐसा व्यक्ति भी जो है आत्महनो जनाहा पशुभनाथ मायावादी, और ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा क्योंकि उसको लगेगा ये सब कम बुद्धि वालों को लिए, थोड़ा आकर्षित करने के लिए ये सब लीला है, भगवान का नाम भी माया है, भगवान की लीला भी माया है, ये सब क्षणिक है, ये सब कल्पना है, भगवान का रूप ये सब ये काल्पनिक है। साधका नाम हितार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पितम, उनका कहना है कि साधक के हितार्थ के लिए मन इधर उधर भागता है, चलो एक फोटो बना दो, एक किसी का भी एक फोटो कुछ भी बना दो ठीक है, मुरली बना दो ठीक है, नीला रंग डाल दो चलेगा, और उसको देख के बैठे रहोगे, कब तक, जब तक तुम समझ जाओगे तुम ही वो हो, तब फोटो की भी जरूरत नहीं, मूर्ति की भी जरूरत नहीं। तो उनके लिए भगवान जो है सीढ़ी के समान है, सीढ़ी चढ़ गया बिल्डिंग हो गया ना, अभी सीढ़ी को फेंक दो, उनको लगता है नाम जप इत्यादि और विग्रह की सेवा जो है एक साधन है, सीढ़ी है, एक बार चढ़ गया तब तक नाम जपो, तब तक जब तक भगवान के सामने आपका विग्रह चूर चूर हो जाए और आपको पता लगेगा आप ही वो भगवान, फिर क्या विग्रह क्या नाम, नाम नामी एक ही हो गए। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा क्यों सुनेगा, क्योंकि उसको लगता है ये सब काल्पनिक है, ये सब कम बुद्धि वालों को थोड़ा ध्यान दे, एक जगह इधर उधर मन भटकता है, चलो कहानी सुनाएंगे, जैसे बच्चों को इधर उधर भागते चलो एक कहानी बोलूंगा, हाँ बैठ जा। तो ऐसे कम बुद्धि वालों को कहानी बोलने के लिए छोटा मोटा ये काल्पनिक कुछ बनाया गया है, सुनो तुम लोग बस, उन लोगों को कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। तो तीन प्रकार के पशुनाथ, जो पशु को काट के खाते हैं उनका हृदय दया नहीं है, पत्थर जैसा हृदय है उसके ऊपर पानी डालने के बराबर, ऐसे लोगों को इच्छा नहीं। जो पशु की हत्या करते हैं यज्ञ में स्वर्ग लोक जाने के लिए और इसी संसार में परमानेंटली निवास करना चाहते हैं थोड़ा अच्छा फैसिलिटी लेके, ऐसे लोगों को कृष्ण कथा क्यों जरूरत है, वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं हो तो स्वर्ग में ही सेटल होना चाहते हैं। और तीसरा व्यक्ति वो जो आत्महनु जना, जो कहता है कि भगवान का रूप गुण लीला कुछ नहीं है, वो तो मनोकल्पना है। तो बिना पशुनाथ ऐसे तीन लोगों को छोड़ के, मतलब ये तीन लोग दुर्भाग्यवश इस हरि कथा का आस्वादन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो भी है निश्चित रूप से अगर थोड़ी बहुत श्रद्धा के साथ, थोड़ी बहुत आतुरता के साथ, सही इच्छा से, सही भावना से, सही व्यक्ति से लेश मात्र भी श्रवण कर ले तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। तो कृष्ण प्रेम जो भी एकदम जागृत नहीं है, सुसुप्त अवस्था में है, कृष्ण प्रेम है हर एक हृदय में, पोटेंशियली है अंदर, नित्य सिद्ध कृष्ण साध्य, कोई बाहर से खरीद के लाके अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है, प्रेम ऑलरेडी है अंदर, इसको अगर उदित करना है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्त से नम्रता पूर्वक और श्रद्धा भाव से अगर सही भावना, ये सही भावना है, और अगर थोड़ा भी श्रवण करे तीव्रता से उसको अपने जीवन में उतारने की इच्छा रखते हुए तो करो ये उदय, बहुत जल्द ही वो प्रेम जो है प्रकट हो जाएगी। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सरल तरीका, कोई तपस्या जरूरत नहीं, कोई बड़ा बड़ा यज्ञ की जरूरत नहीं, कोई बड़ा बड़ा दान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जगह बैठो और सुनो, कौन सी बड़ी तकलीफ है, और कथा सुन रहे, अरे किसी का कहानी सुन रहे, बोला अच्छा है। मैंने देखा है बड़े बड़े आदमी लोगों को भी, आप फिलोसफी सुनाओ, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर जो है 24 तत्वों का बना हुआ है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरो व्यक्तमेव च। और सुनिए एक मैं कहानी सुनाता हूं इसके बारे में, सब खड़े होते हैं, हाँ बोलो बोलो। कहानी सुनने की इच्छा बहुत है हर एक को, किसी ने तो भगवान ने इतनी सुंदर लीला की, उनको क्या जरूरत है यहाँ आके लीला करने को, तो हमेशा उधर ही कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, इस एकदम गंदे एरिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ ऐसे एरिया में, दुखालय मशाशोकम में आके क्या लीला करने की जरूरत थी। मनोहर लीलाएं भगवान ने ऐसे सुंदर लीलाएं की जो मनोहरती, हमारे मन को हर लेता है, इसीलिए उन्होंने यहां आके लीला की। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, स्वाभाविक रूप से हमको, जैसे हमने कल चर्चा किया, हर एक व्यक्ति को कुछ सुनने की इच्छा है, गुणगान करने की इच्छा है, स्मरण करने की इच्छा है, पूजा करने की इच्छा है, पर किसको करे? जब सूरज नहीं उदित होता है तो छोटे मोटे जुगनू है सबको देखने लगते, जुगनू लगता है कि देखो मैं चमक रहा हूं, मैं दुनिया को पूरा प्रकाश दे रहा हूं, पर एक बार सूरज उदय हो गया तो जुगनू को कोई देखता भी नहीं, उसको खुद नजर नहीं आता उसका लाइट। तो इस तरह से जिसने भागवत के सूर्य को, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानानि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनोदितः, ये सूरज उदित हो गया है भागवत, भगवान श्री कृष्ण का उदय, ऐसा हीरो का दर्शन कर लिया तो ये सब छोटे मोटे हीरो जो आजकल जिसको हम लोग पूजा करते हैं वो सब ऐसे जुगनू जैसे, उनका लाइट अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि सूरज चमक गया, अभी टॉर्च लाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से दुर्भाग्यवश न सुनने के कारण हम ऐसे वैसे लोगों के पीछे जाते हैं। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। और फिर परीक्षित महाराज कहते हैं वो तो ठीक है, ये तो सुनना है हमको क्योंकि मैं भव सागर को पार करना चाहता हूं, इसके अलावा भी मैं सुनना चाहता हूं। क्यों? बाद में कहते हैं कि हमारे वंशज के, मेरे पिता, मेरे दादाजी, इन सबको तो इन्हीं ने रक्षा किया है, उन्हीं की कृपा से हमारा वंश चला आ रहा है, हमारे वंश में हमेशा सब लोगों ने भगवान का आश्रय लिया है और भगवान ने उनका मदद किया है। कहते हैं पिता महामे समरे मरंजये पितामह मतलब पांडव। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरे पितामह पांडव जो थे समरे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अमरं जयैहि, अरे उनके सामने ऐसे कैसे शत्रु लोग कौन थे, ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं थे, हालांकि हमारे पितामह बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली था, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, पर उनके विरुद्ध में कौन लोग थे? अमरं जयैहि, जो देवता लोगों को भी वश में की, जिन्होंने हराया था, ऐसे लोग देवव्रत आद्या अतिरथैहि, भीष्म पितामह, जिन्होंने परशुराम को भी के साथ कई 21 दिन तक लड़ाई किया, बाद में किसी को सनत कुमार, चार कुमारों को आके बोलना पड़ा, भाई आप लोग लड़ते रहोगे तो चलता रहेगा, आप लोग दोनों बराबर हो, आप लोग में कोई जीतेगा भी नहीं हारेगा भी नहीं, परशुराम जैसे जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश को ऐसा मार दिया, खत्म कर दिया, उनको भी भीष्म पितामह बल रोक के रखे रहे, वो अकेले काफी थे पूरे पांडव की सेना को आधा दिन में खत्म कर देंगे, उनके अंदर वो शक्ति थी। द्रोणाचार्य, अरे पांडवों को सिखाया उन्होंने, वो थे कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ऐसे बड़े बड़े महारथी लोग, पर देवव्रत आद्य अतिरथै ही तिमिंगलै, और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, पांडव और कौरव सेना जो खड़ी थी, पांडवों के सामने जो कौरव सेना थी, वो कौरव सेना 11 अक्षौहिणी, इनके पास 7 अक्षौहिणी, एक एक अक्षौहिणी मतलब लाखों लाखों लोग, तो दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरव की सेना जो थी एक सागर के समान थी, और उसको पार करना था हमारे पितामह 5 पांडवों को, आज तक कोई सागर को तैर के पार किया है? तैर के, बोट के ऊपर नहीं, जहाज के ऊपर नहीं, تیر کے آج تک کوئی پار نہیں کر پایا. پار کریں گے تو وہ دوسری بات ہے, کہ کسی طرح سے ایسا ایسا پکڑ کے پار بھی کر لیا ہو, پر اگر وہ سمندر میں بڑے بڑے مچھلیاں شارک جیسے تیمنگل, تیمنگل مطلب جو شارک کو بھی نکل جاتے ہیں, تیمنگل مچھلی ایسے ہے جو بڑے بڑے جہاز کو ایسے نکل جاتے ہو, تو اگر اس میں سے بھرا ہوا ہو پہلے تو سمندر پار کرنا مشکل ہے, ہر پھڑاتے بیچ میں ڈوب کے مر جائیں گے, اور بائی چانس اگر تیر بھی کونے کو اور بیچ میں جا رہے اس میں اگر یہ تیمنگلا اور ایک نہیں ہزاروں تیمنگل بھرے منہ کھول کے کھڑے ہو آ جاؤ چھلانگ مارو سمندر میں, دیر از نو چانس, ایبسولوٹلی نو چانس, سوال ہی نہیں اٹھتا. دورتیم کورو سینیہ ساگرم, پر اس ساگر کو ایک چلو بھر پانی جیسے ہمارے پانڈو نے میرے پتا مہاؤں نے پار کر دیا. کیوں؟ وقت پدم سمیت پلواہا, کیونکہ بھگوان شری کرشن نے ان کو آشرے دے دیا. کرشن پانڈو کے ساتھ کھڑے تھے. گیتا میں بھگوان کہتے ہیں دیوی ایشا گنمئی مم آیا دورتیا, دورتیا مطلب ایبسولوٹلی امپاسبل, ناممکن ہے پار کر پانا. دورتیم یہ سیم شبد ہے اس کے اندر, دورتیم کورو سینیہ ساگرم, بھوتک بھو ساگر کو پار کرنا بہت مشکل ہے. سماشرتا یہ پد پلوم پلوم مہت پدم پنیشو مرارے بھوام بدھر وتس پدم 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 یت پدام نتیشان, پر جو بھگوان کی شرن لے لیا ہے اس کے لیے بڑی ساگر جتنی بھی بڑی ساگر کیوں نہ ہو وہ چلو بھر پانی اتنے سے ایک وتس پدم جیسے اتنا چھوٹا بن جاتا ہے اور بچہ بھی پار کر پاتا. اس کو ثبوت ہے, ثبوت ہے, یہ بھگوان کی مانتا ہے. ارے ایسے لوگوں کا ایسے ویکتی کا آشرے چھوڑ کر اور کس کے ہم لوگ لے رہے ہیں, ایل آئی سی کا آشرے لے رہے, کوئی ڈاکٹر کا لے رہے, کوئی لائر کا لے رہے, ارے وہ خود ڈوب رہے ہیں وہ ہم کو کیا بچائیں گے. آشرے لینا ہے تو ایسا ویکتی کا آشرے لو جس کا آشرے کبھی تم کو نراشرے نہیں کرے گا 100%, نہیں تو انتتہ نراشرے ہونا ہی ہے ہم کو ایسا آشرے. تو درتیم کورو سینیہ ساگرم کرتوا اترن, ایسے پار کر گئے وتس پدم, ایک بچھڑے کے کھر میں جتنا پانی ہے, یت پلواہ پلواہ ایسا ناؤ بھگوان نے دے دیا. کون سا ناؤ؟ بھگوان کے چرن کمل کا ناؤ. جس نے بھگوان کے چرن کمل کا آشرے لے لیا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اسی لیے جنہوں نے میرے پتاما کو آشرے دیا ہے, میرے سارے ومشج کو تو انہوں نے رکشا کیا ہے, اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں. اور سنائیے اور سنائیے. وہ تو میرے پتاما کو بچائے وہ تو دوسری بات, انہوں نے مجھے بھی بچایا. آج میں یہاں بیٹھ کے سن رہا ہوں کرشن کتھا, کیونکہ انہوں نے مجھے شروع شروع میں پیدا ہوتے ہی, پیدا ہونے سے پہلے, ایکچولی پیدا ہوتے ہی نہیں, پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے بچایا. وہ کہتے ہیں درونیستر وپشٹم ادم مدنگم سنتان بیجم کرو پانڈوا نام جگوپ ککشم گت آت چکرو ماتشمے یہ شرنم گتایا. شرنم بھگوان کی شرن لینے کی مہیما کتنی ہے بتاتے ہوئے کہتے ہیں درونی استر. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب کروکشیتر کے رن بھومی کے بعد سب سے پہلے اشوتھاما کو اتنا ایرشا تھا پانڈوں کے پرتی, تو بولا اس نے کورو سینا کو تو سارا نشٹ کر دیا, پورا مطلب ختم ہی کر دیا, جڑ سے نکال کے پھینک دیا کورو کے, کوئی بچے ہی نہیں. تو بولے میں بھی پانڈووں کی جو جتنے سارے ومشج ہیں سب کو مار دوں گا. تو سب سے پہلے وہ رات کو گیا جب پانڈو کے پتر, پانچ بیٹے پانڈووں کے سب لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے بچوں کو اشوتھاما جیسا اپنے آپ کو مہاویر سمجھتا تھا, پر اس نے سوئے ہوئے بچوں کو جا کے پانچوں کا سر کاٹ دیا اور اس کو لا کے دریودھن کو دیا. دریودھن بھی اس کو کوسنے لگا, بولے تو نے ٹھیک نہیں کیا. اس کو لگا کہ دریودھن بہت پرسن ہوگا, دریودھن مر رہا تھا کیونکہ بھیم نے اسے مارا تھا اور مر رہا تھا, وہ بھی شریر چھوڑ رہا تھا, پر شریر چھوڑتے وقت بھی ایسا کرور دریودھن بھی سمتی نہیں کیا, بولا تو نے جو کیا ٹھیک نہیں کیا. ارے بچوں کو تو نے سوتے ہوئے مارا, پانچ پانچ بچوں کو. تو اس طرح سے پانڈووں کی جو ومشج تھے اس کو مارا. پھر اسے پتا چلا کہ پانڈووں کا پتر جو پوتر کون ہے, ابھیمنیو کا ایک پتر جو ہے وہ اترا کے گرب میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. وہ پیدا ہوا تو پانڈووں کا वंशज चलेगा। तो उसने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जब थे अभिमन्यु के पुत्र, उसी ने उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभी ब्रह्मास्त्र वो है जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता है, पूरे बड़े बड़े ग्रह को मार देता है। इतना बड़ा अस्त्र एक कोई बड़ा आदमी तगड़ा आदमी आए वो दूसरी बात है, एक बच्चा, और बच्चा क्या छोटा बच्चा, मां के गर्भ में एकदम निस्सहाय ऐसे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र। अरे एक मच्छर आपके घर में है तो आपने पूरा तोप लाया, पूरा इंडियन आर्मी का बड़ा बड़ा बॉम्ब ला के, अरे मच्छर है, मच्छर को एक ऐसे मारो ऐसा खत्म बस। तो पूरा इंडियन आर्मी जितना सारा टैंक है, विजेंता टैंक ले आओ, यहां से स्टार वॉर सिस्टम ले आओ, डिस्ट्रॉय करो पूरा। तो इस तरह से कहां एकदम निस्सहाय गर्भ परीक्षित महाराज, और द्रोणी ने, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र, द्रोणी अस्त्र, तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया सीधा, अल्टीमेट वेपन, उससे आज तक कोई ना बचा है ना बच पाएगा। द्रोणी अस्त्र विपुष्ट, विपुष्ट मतलब प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गए, जल के राख कर देता है वो। इदम मदंगम, मेरा शरीर जो था जल के राख हो गया था। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों का एक ही संतान बीज बचा हुआ था बस, और वो मैं था। पर द्रोणी अस्त्र हालांकि आया, एक जगह बताया है कि वो एक्चुअली मार दिया था, दूसरी जगह कहते हैं कि जब आया तो तुरंत भगवान ने रक्षा की। जुगोप कुक्षिम, भगवान ने छोटा सा एक रूप लेकर डायरेक्टली उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और वो भ्रमण करने लगे परीक्षित महाराज के चारों ओर, अपना गता आप्त चक्रो, अपना सुदर्शन चक्र लेके बोले, देखता हूं कौन कौन सा अस्त्र इसको पार कर सकता है। सुदर्शन एक ऐसा अस्त्र है, सुदर्शन वो ऐसा एक अस्त्र है जिसके सामने सारे जितने सारे अस्त्र है उसका क्या बोलते हैं, जैसे भगवान सारे देवताओं के मेन देव है, ऐसे सारे अस्त्रों का मूल अस्त्र है सुदर्शन, उसके सामने क्या करेंगे। तो सुदर्शन लेकर, इसीलिए परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि गर्भ में ही उन्होंने भगवान आत्म साक्षात्कार हो गया उसका, उत्तरा के गर्भ में उसने आत्म साक्षात्कार भगवान का दर्शन कर लिया डायरेक्टली। इसीलिए जब पैदा हुआ तो सबकी परीक्षा करता था वो, नहीं ये नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो तो वो व्यक्ति कहां गया जिसको मैंने गर्भ में देखा, सबकी परीक्षा करता था वो, इसीलिए उसका नाम बड़ा परीक्षित, मतलब तीव्रता से ढूंढ रहा था कहां वो व्यक्ति फिर से मिलेगा, एक बार जिसको चख लिया फिर और किसको दिखेगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उसको ही देखना चाहता हूं मैं। तो जुगोप कुक्षिम गता आत्त चक्रो, प्रवेश करके मातुश्च मेया, सिर्फ उतना ही नहीं मुझे रक्षा की, मेरे माता उनको भी रक्षा किया। क्यों? शरणम गताया, क्योंकि मेरी माता ने उस समय निस्सहाय रूप से आपकी शरण लिया। मातुश्च मेय शरणम गताया, और फिर कहते हैं मेरे वंशज तो दूर की बात, मेरे खुद का शरीर तो दूसरी बात, पर इतना ही नहीं कहते हैं अखिल देह भाजाम, जितने लोगों ने एक देह को स्वीकार किया है इस भौतिक संसार में, जितने आत्माओं ने एक भौतिक देह को स्वीकार किया है, उनका अगर आश्रय लेना चाहते हैं सही में तो आपके अलावा और कौन है। और ये ध्यान में रखते हुए वो दूसरा श्लोक कहते हैं, वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम अंतर बहिर पुरुष काल रूपी प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। कहते हैं वीर्याणि, आपके वीर्य, आपके जो गाथा, आपके गुणगान, तस्य मतलब आपके अखिल देह भाजाम, 84 लाख जीवन में जितने सारे लोग जीवात्माओं ने एक देह धारण किया है, अंतर बहिर पुरुष काल रूप ही, अंततः आपके शरण आना ही पड़ेगा उनको। किस रूप में वो इसका अनुवाद प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो अंदर और बहिर अंतर बहिर सारे जीवों के सामने प्रकट होते हैं अपनी स्वरूप में, काल के रूप में, परमात्मा के रूप में या विराट स्वरूप के रूप में, सबको मुक्ति देने देते हैं, या मृत्यु के रूप में या आजीवन जीवन के रूप में। कृपया उनके दिव्य गुणगानों का श्रवण कराइए। अंतर बहिर पुरुष काल रूपे, अंततः हर एक व्यक्ति को भगवान की शरण जाना ही है, 100% आपको शरण जाना ही है। दो प्रकार से जा सकते हैं, पुरुष काल रूपे। अगर आप भगवान की शरण नहीं जाएंगे, कंस का जैसे विरोध करेंगे, तो काल के रूप में आपको मार देंगे। शरण जाना मतलब क्या? दंडवत प्रणाम करना, है कि नहीं? श्री कृष्ण शरणम मम। किसी की शरण जाते हैं तो एकदम दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग अष्टांग सारे आठवां अंग से मैं प्रणाम कर देते हैं कि मैं मानता हूं भाई, मैं नहीं हूं, आप महान हो, मैं तुच्छ हूं। आप महान हो, हम एकदम आप महान हैं, आप शरण लेने योग्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं। तो कंस ने नहीं लिया, पर नहीं भी लोगे तो अंत में साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, उल्टा या सीधा। मृत्यु के बाद तो ऐसा साष्टांग अष्टांग क्या, पूरा सब अंग बस फ्लैट, तो अंत में शरण जाना ही पड़ेगा। मरते दम तक हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान, अरे भाई भगवान, ठीक है बोलते रहो, और अंततः साष्टांग। और अगर जो व्यक्ति पूरी शरण नहीं जाता, अंततः वो साष्टांग करता है उल्टा, पर जो पहले से शरण जाता है उसके लिए वो मृत्यु जो है भगवत धाम का रास्ता है, नित्य मुक्ति का रास्ता है। तो अंततः हमको शरण लेना ही है, क्यों ना अभी ले। परमात्मा के रूप में अंदर अगर आश्रय लेंगे तो तुरंत वो मुक्तात्मा है, अगर नहीं तो अंततः हमको शरण तो जाना ही है। तो कहते हैं कि आप ही एकमात्र शरणागत शरण लेने व्यक्ति हो, क्योंकि अंततः हर एक व्यक्ति को आपका शरण लेना ही है, इनवॉलेंटरीली इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड वॉलेंटरीली इन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पुरुष, ब्यूटिफुल फॉर्म। आपका सुंदर स्वरूप देखकर अभी शरण जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काल के रूप में आपको तो शरण जाना ही है हमको। इस तरह से हर एक व्यक्ति के आश्रय अंततः आश्रय तो वही है। तो इसीलिए प्रभु अब मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। अब सवाल उठता है कैसे शरण ले, शरण लेने का तरीका क्या है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे किसी अवस्था में उनका आश्रय उस क्षण ले सकता है नाम के रूप में। जब और ये जो भावना हम हरि नाम लेते हैं, नाम लेने में यही भावना है, भावना है कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे सर्वानंद के भंडार राम, कृपा करके आप मुझे अपनी चरण में लीजिए, आपकी सेवा में लगाइए। तो एक्चुअली जब हरि नाम ले रहे हैं तो हम शरण ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। और जब कृष्ण की सेवा है उसका हम आश्रय लेते हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस। कोई भी सेवा भगवान की कृपा से जो कुछ भी हमें सेवा मिले, देखने में वो बहुत तुच्छ सेवा हो या कोई महान सेवा हो, पर उस सेवा का पूर्ण रूप से आश्रय लेंगे, क्योंकि भगवान अपनी सेवा से अभिन्न है। उस सेवा को भगवान की अहितु की कृपा देखकर उस सेवा का आश्रय लेंगे, तो डायरेक्टली भगवान का आश्रय में मिलेगा। और सबूत क्या है, उस सेवा में ऐसा दिव्य आनंद अनुभव होगा कि हम निश्चिंत और निर्भय हो जाएंगे। पर उससे विरह होने के बाद जितना भी सारा हम अपना प्रोग्राम रखेंगे अपने संरक्षण का, हमेशा चिंता हमेशा भय निश्चित रहेगा। शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय अगर दूर करना है तो आश्रय लेना है। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे, मन को कहते हैं इसीलिए कि कृपया आप भगवान की शरण लो, और किसी की शरण लेंगे तो भय नहीं जाएगा, चिंता नहीं जाएगा, शोक नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा। पर भगवान की शरण लेंगे तो निश्चिंत निर्मोह निर्माण मोह अपने आप हो जाता है जब हम आश्रय लेते हैं। तो आश्रय लेने का मतलब है भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का, एक्चुअली भक्तों का भी आश्रय लेना है, क्योंकि डायरेक्टली भगवान नहीं, भगवान के प्रतिनिधियों का हम आश्रय लेते हैं, वो भी भगवान का आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ये नीच पापा यद अपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभो विष्णुवे नमः, यद अपाश्रयाश्रय नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। हम लोग गुरु की जो प्रणाम मंत्र कहते हैं, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नमा ओम विष्णु पादाय। क्यों महान है वो, क्योंकि विष्णु भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लिया हूं। जैसे समझ लीजिए ये तार है और वो लाइव वायर है, उसमें करंट जा रहा है और किसी ने उसको पकड़ लिया, अटक गया पूरा, ऐसा मतलब पूरा करंट जा रहा है उसके, और उसको बचाने के लिए कोई और पकड़ा तो उसको भी करंट लगने वाला है, क्योंकि ये लाइव करंट उसके शरीर से गुजर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, करंट का बात कर रहा हूं, बहुत खतरा है। जिसने वायर को पकड़ के रखा है, उसको कोई पकड़ा तो उसको भी करंट लगने वाला है, क्योंकि वो अभी करंट का ये बन गया, वो भी कंडक्टर बन गया है, बस कंडक्टर नहीं, लाइव कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो कंडक्टर को जो पकड़ा वो भी कंडक्टर बन जाएगा। इसी तरह से जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उसका जो कोई आश्रय लिया, यद अपाश्रय आश्रय, उसको भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना वो भगवान के ये लेने का, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का। विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, और इसीलिए भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि पूर्ण रूप से उन्होंने आश्रय लिया है। तो भगवान के नाम का आश्रय, कितने अलग अलग तरीके से भगवान प्रकट हुए हमारे सामने आश्रय लेने के लिए, अपने नाम के रूप में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण होता, अपने रूप के रूप प्रकट हुए, उनके रूप का आश्रय लिया जा सकता है। उनके अनित की कृपा है कि उन्होंने अपने रूप में एक ऐसे तरीके में, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, उनको उनको सेवा करने का एक मौका मिले। अगर विराट स्वरूप में आ जाए तो कैसे उनके सेवा किया जाए, उनको कैसे भोग लगाया जाए। पर ये इतने सुंदर स्वरूप से प्रकट हुए कि उनका आश्रय ले सकते सेवा के रूप में। तो भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, या जैसे परीक्षित महाराज ने लिया, भगवान की लीला का भी आश्रय ले सकते हैं। जब हम श्रवण कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे हृदय को हम आश्रय भगवान की चरण कमलों में रख रहे हैं। तो लीला का आश्रय और भगवान के भक्तों का आश्रय, और एक तरीका है जो बहुत सुंदर बहुत ही मधुर, वो है प्रसाद का आश्रय। कोई भी दूसरा आश्रय लेने में जितना भी कड़वा हो, पर ये आश्रय बहुत आसान है। कोई भी ले सकता है, और ज्यादा नहीं कहेंगे अभी, किसी एक चीज का आश्रय लेंगे अभी। चाहे ये कड़वा लगे, पर अभी चिंता मत कीजिए, इसके बाद जो आश्रय वो बहुत मीठा है। तार मत दे जिह्वा आती लोग। कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण इतने दयामय है, कोई बारे जिह्वा जाए, यही तो हमारा मुक्ति का कारण है और बंधन का कारण है। तो प्रेम से स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। इस तरह से हमें जानना चाहिए कि भगवान एब्सोल्यूट पूर्ण है, इसका मतलब उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके शुद्ध भक्त और कोई भी उनसे जो संपर्क है, कोई भी चीज उनका संपर्क है, वो भी जैसे भगवत गीता और भागवत, ये भगवान से अभिन्न है। और जब भागवत का आश्रय लेते हैं, आश्रय का लेना मतलब जैसा हम विग्रह का, विग्रह के सामने कैसे जाते हैं शुद्ध होकर, बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े अच्छे तरह से सेवा करते हैं, इसी तरह से हृदय से शुद्ध होकर तीव्रता से अगर एक एक शब्दों का भी आश्रय ले भागवत में, तो वो आश्रय हमको डायरेक्टली मिलेगा और उस हद तक हम शोक मोह भय आपह, शोक मोह और भय से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से परीक्षित महाराज इतने आतुर हैं, उन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 5-6 दिन हो गया है, पर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा। बोलो, विस्तार से बोलो, शॉर्टकट मत बताओ, आराम से बोलिए ताकि हम सुने और पूर्ण रूप से उसका आश्रय लें। इस डायरेक्ट प्रूफ परीक्षित महाराज इस स्थिति में 10-1.5 दिन बचा है और बोल रहे हैं कि नहीं, कोई इसमें ये मत लीजिए, आराम से और विस्तृत रूप से सुनाइए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद, यस, प्रश्न है? दो प्रश्न, दो ही प्रश्न बस।
आप बोले कि हम रोज नाम जप के द्वारा आश्रय ले रहे हैं भगवान का, लेकिन इतने सालों से ये आश्रय लेने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माया का आश्रय भी छोड़ा नहीं है, विशेष करके स्थिति ऐसी बन गई है कि ना घर का ना सकते, लेकिन आगे जाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम डिपेंडर हो जाते हैं तो कैसे समझ ले पीछे आने का चांस नहीं है, तो उपभोग भी नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाना भी रास्ता थोड़ा।
सही में देखा जाए तो भगवान कहते हैं गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो स्वाभाविक है, रस को ढूंढना ये स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति रस का आस्वादन करना चाहता है और वो रस जो है वो एक रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप जैसे 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। हर एक व्यक्ति अंततः ही इज लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज टू लव एंड बी लव्ड। आत्मा का स्वरूप है कि प्रेम को स्वीकार करना और प्रेम देना, लविंग रिलेशनशिप। संसार की भौतिक चीजें जितना भी हो वो हमें उतना तृप्त नहीं कर सकती जितना एक प्रेम में रिश्ता। अल्टीमेटली एवरीवन इज फॉर लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप। और विषया विनिवर्तन निराहार से देहिन रसवर्जम, और हमें कहता है कि ये जो भौतिक रस है ये चपल है, कमल दल जल जीवन तलमल, ये बुद्धि से हम समझ रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं कि ये जो रस है भौतिक रस ये चपल है, चपल मतलब क्षणिक है और ये एक्चुअली तृप्त नहीं कर सकता आत्मा को। पर इतने जन्मों से करने के बाद इसका अनुभव है हमको, हम जानते हैं कि अच्छा लगता है क्योंकि इतने साल से अनुभव कर रहे हैं हम लोग, तो आदत नहीं छूटी, पर बुद्धि से जान गए कि उसमें रस नहीं है और वो जो रस भी है वो क्षणिक है और वो सच्ची में तृप्त नहीं कर सकता। तो बुद्धि से जानते हैं अच्छा नहीं है, पर शरीर कहता है कि नहीं, आदत अभी तक छूटी नहीं। और जहां तक आध्यात्मिक रस है, बुद्धि से जानते हैं वो अच्छा है, पर अनुभव नहीं हुआ अभी तक। जो अनुभव हुआ है वो बुद्धि से जानते हैं अच्छा नहीं, और जो अनुभव नहीं हुआ है बुद्धि से जानते हैं वो अच्छा है। तो गधा घर का ना घाट का, ये हमारी स्थिति है। जिसका अनुभव है वो मालूम है कि अच्छा नहीं है, और जो अच्छा है उसका अनुभव नहीं है। तो उस स्थिति में जो है, हमारी स्थिति ऐसे ही है, अभी तक उसका आस्वादन नहीं हुआ, और जो आस्वादन नहीं हुआ उसको, जैसे एक भिखारी है उसके हाथ में एक सूखा रोटी है, और उसने सुना है सूखा रोटी अच्छा नहीं होता, मालूम है, पर क्या करेगा बेचारा भूखा है, कम से कम कुछ तो सूखा रोटी तो मिल रहा है। और उसके सामने अगर कोई 56 भोग ला के रखे तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप उसको पता भी नहीं लगेगा कहां गया और। इसी तरह से हमारी स्थिति ऐसी है, इसीलिए रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक को कहते हैं भक्ति रस अमृत सिंधु। ये रस जो है भौतिक संसार का, ये रस जो है अभी आज मीठा है, कल वही चीज खट्टा हो जाएगा, पेंडुलम जैसा, भोग रस त्याग रस, भोग भोग किया बाद में उब गया बस, अभी त्याग रस, पहले मिठाई खाया, खूब मिठाई खाया, अभी फरसान खाओ, फरसान खूब खा लिया, फिर मिठाई खा लिया, फरसान खाओ, ऐसा है। इसको चक किया, बहुत चक लिया, अभी थोड़ा टाइम, अभी उनको मंडे टू सैटरडे बहुत काम कर लिया, अभी छुट्टी चाहिए, छुट्टी में ज्यादा दिन चलेगा बहुत छुट्टी हो गया, अभी वापस जाना हमको। तो इसका रस फिर उसका रस, भोग रस त्याग रस। पर जब समझ लेते हैं कि ये रस जो है दोनों जो है क्षणिक है और अतृप्त नहीं करते, तो ऐसा रस ढूंढना चाहता है जो कभी उब ना जाए, वो है भक्ति रस, भक्ति रस। और अंतर क्या है, अगर भी ये भोग और त्याग रस में फंसे पर मृत है, अंततः शरीर जब छोड़ देंगे तो सारे रस का जो साधन है वही चला गया, पर भक्ति रस अमृत, ये अमृत है, नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये शरीर के नाश होने पर भी ये रस का नाश नहीं होता। और वो बिंदु है, ये सिंधु है, बड़े रेगिस्तान में आपको प्यास लगी है और एक बूंद पानी आपके जीवा पे टप डाल दिया जाए, एक्चुअली प्यास और भी बढ़ जाता है। अगर पानी नहीं पिया तो ठीक है, बहुत प्यासा है पानी नहीं मिला तो ठीक है, पानी मिला अंदर झांक के देखा बोतल में 2 बूंद है बस, वो पीने के बाद और भी एकदम तड़फड़ा जाता है, नहीं होता तो अच्छा था। तो वारी बिंदु समा, आचार्य कहते हैं कि सुतमित रमणी समाज, भौतिक संसार के सारे जो रिश्ते नाते हैं वो सुत वारी बिंदु समान, एक छोटी बिंदु के समान है, पर ये कैसा है सिंधु, इसमें जो डुबकी लगाया इसका आदि अंत नहीं है। षड गोस्वामी के अष्टक में हम सुनते हैं त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, उन्होंने मंडलपति श्रेणी को छोड़ दिया तुच्छवत, तुच्छ समझकर, भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठा से, तो एक कौपीन और एक कंठ पास, दो ही कपड़े पहन के निकल पड़े, पर कैसे जीवित रहे वो। प्रभुपाद कहते हैं सी आर दास, चित्तरंजन दास जो था उसको 60,000 रुपया मिलता था 1920 में, अंग्रेज गवर्नमेंट में काम करता था वो, तो लॉयर था, बहुत बड़ा लॉयर था कलकत्ता का, उसको 60,000 रुपया 1920 में, आप समझ लीजिए कितना होगा, आज तो करोड़ रुपया होगा। फिर गांधी जी ने कहा कि नाम को ऑपरेशन मूवमेंट, तो उसने कहा कि ठीक है मैं पैसा देता हूं, बोले पैसा नहीं चाहिए तुम आ जाओ, अंग्रेजों का ये छोड़ो और कांग्रेस मूवमेंट में ज्वाइन करो। तो उसने रिजाइन कर दिया लॉयरशिप और उसने गांधी जी को ज्वाइन किया, तो कांग्रेस से उनको स्टाइपेंड मिलता था 500 रुपया, 500 रुपया हमारे लिए बहुत ज्यादा था, पर फिर भी वो रह नहीं पाया, थोड़े दिन में मर गया, रह नहीं पाया, बोला कि 500 रुपया कहां 60,000 कहां 500, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाया। पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतने बड़े जमींदार थे, होम सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और एक दिन के अंदर सबको छोड़ के कौपीन वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन रहते थे, तो कौपीन कंठाश्रित हो, पर वो मरे नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होके मरे नहीं, क्यों, गोपी भाव रस अमृत अवधि लहरी कल्लोल मग्नोम हो, क्योंकि अंदर से वो रस का आस्वादन कर रहे थे। गोपी भाव रस अमृत अवधि, ऐसा बड़ा अवधि मतलब समुद्र, उसमें वो कल्लोल मग्नोम हो रहे, एकदम डुबकी लगा रहे हो। इसीलिए देखो सस्टेन। अब सवाल ये उठता है हमारी स्थिति क्या, हम तो षट गोस्वामी नहीं है और ना ही हमारी स्थिति ऐसी है, फिर भी उनके चरण चिन्हों पे चलते जब अनुगम उनके नॉट इमिटेट बट फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स, एटलीस्ट इतना तो हमको मालूम है कि पहले ये जो चार चीज नहीं करना चाहिए उसके पीछे भी हम ऐसे पागल थे, कम से कम एक किसी एक चीज में तो कोई ना कोई हर एक व्यक्ति पागल था इसके पीछे, मांसा नशा जुआ व्यभिचार इत्यादि, और आज कम से कम उतना पागलपन तो नहीं है उसके पीछे, किसी तरह से हम लोग सहन कर लेते हैं। और धीरे धीरे एक स्थिति आएगी जब उसको सोच भी नहीं सकते, बाप रे ऐसा कैसा करता था, इसमें रमण करता था मैं, और आज वो बास भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है कुछ तो आस्वादन मिला है, कुछ तो आस्वादन मिला है, तो वो विश्वास रखना चाहिए। आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा रुचि, रुचि आना है। आज रुचि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अनर्थ है, तो कभी कभी रुचि मिलता है साल में एक दिन, और 364 दिन करते रहना पड़ता है, कहां रुचि पता नहीं पर बोला गया है बस पर क्योंकि अनर्थ है। उत्साह मई घन तरला, कभी घन है कभी तरल है, कभी इंटरेस्ट है कभी नहीं है, कभी मन करता है कभी नहीं करता है, पर नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट प्रायेश भद्रेश, तो यहां श्रद्धा की बहुत जरूरत है। अंग्रेज क्रिश्चियन कहावत में ये स्थिति आप जो कह रहे हैं उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा का डार्क नाइट। डार्क नाइट मतलब क्या, सूरज डूब गया और अभी तक सूरज उगा नहीं, रात को 12 बजे, 12 बजे क्या हुआ, 6 बजे ही सूरज डूब गया और अगले दिन 6 बजे सूरज उगेगा, अभी हम 12 बजे, 6 घंटा इधर भी बाहर इधर भी दूर, मतलब हमारे जीवन में अभी अननेसेसरी इंद्र तृप्ति का सूरज डूब गया, क्योंकि मांसाहार नहीं नशा नहीं जुआ नहीं, उसका हल करना क्या फिर, जो अच्छा था जिसमें आनंद लेते थे वो डूब गया, सूरज डूब गया, और कृष्ण भक्ति का अभी सूरज उगा नहीं है, ठीक 12 बजे हमारी स्थिति है, ना शाम ना दिन, ना दिन ना क्या बोलते, दोपहर भी चला गया और सुबह भी नहीं आया, हमारी स्थिति ऐसी। पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, थोड़ा ध्यान वेट करो, जस्ट स्टिक ऑन, जस्ट स्टिक ऑन, इफ यू जस्ट स्टिक ऑन। अब जैसे प्रभुपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये साधना भक्ति कैसी है, आम जो कच्चा है, कच्चा आम कैसा है, वो एक कहीं जगह थोड़ा मीठा है थोड़ा पका हुआ है और जगह थोड़ा खट्टा है, पर वो आम अगर पेड़ से लटके रहे तो धीरे 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 पक जाएगा, और पक जाएगा जहां भी उसको मुंह डालो उतना ही मीठा रहेगा। तो अभी हमको शायद कुछ चीज अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है पर सेवा अच्छा नहीं लगता, या नाम अच्छा लगता है पर कथा अच्छा नहीं लगता, या पुस्तक अच्छा लगता है या भागवत अच्छा लगता है गीता अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा लगता है कुछ कड़वा लगता है। पर जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण के संबंध में जो भी हो आनंद देगा, पर अभी तक सूरज उगने में टाइम है, 6 घंटा और बाकी है, पर टिके रहो कम से कम, पेड़ से टिके रहना, अगर पेड़ से अलग हो गया तो कच्चा आम ऐसे ही नीचे गिर गया तो खत्म, सड़ जाएगा पकेगा नहीं, किसी तरह से जस्ट स्टे ऑन। कैसे, थोड़ी बहुत श्रद्धा है साधु संग, वो ऐसा संग में रहना है, तो थोड़ा भी ढीला हो गया तो फिर से वो बर्नर चालू होगा, हाँ फिर से गर्म होगा, फिर ठंडा पड़ गया फिर से गर्म, थोड़ा कीप लो फ्लेम, लो फ्लेम में रखा ना, ज्यादा फ्लेम भी किया तो तल नीचे जो है वो ये हो जाएगा काला हो जाएगा फ्राई आउट हो जाएगा, और एकदम भी कम कर दिया तो ठंडा हो जाएगा तो एकदम लो फ्लेम में 16 माला 4 नियम रेगुलर भागवतम क्लास, भक्तों का संग, जो जो प्रोग्राम है कम से कम वो चालू रखो बस, और ऊपर से स्टर करते रहो, ऐसा हिलाते रहो, तो दूध एकदम स्वीट रहे, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंस मिल्क बन जाए, बहुत मीठा, जहां भी छुओ उतना ही मीठा. सो वी हैव टू हैव फेथ. हाउ डू यू डेवलप फेथ? श्रद्धा कैसा पैदा करें? ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ज्यादा श्रद्धा है हमसे, ऐसे लोगों का संग करें. और दूसरा, ऐसे महान भक्तों का, भक्तों के बारे में सुन के, जिनके अंदर, जिन्होंने वो श्रद्धा प्रकट की. हरिदास ठाकुर, क्या श्रद्धा, बोले हरिनाम ले लो तो काट काट के हजार टुकड़े कर दूंगा तुझे. तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तब वो हम बोधन ना छाड़े हरिनाम. क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा क्या हजार टुकड़ा करोगे, एक एक टुकड़ा भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा तो हजार हजार आवाज सुनाई देगा. जितना ज्यादा टुकड़ा करो, जैसा इंद्र ने वो दीति के घर में जाके वो मरुत को मारा, एक बच्चा मारने वाला बोल के मारा तो उसके छह टुकड़े हो गए, छह हंस रहे इंद्र को देख के, सात बच्चे हो गए, तो सातों को उसने मारा तो 49 हो गए, सब हंस रहे इंद्र को देख के. तो इंद्र बोला, और ज्यादा मारूंगा तो मेरे शत्रु बढ़ते रहेंगे. तो मारना. तो इस तरह से हरिदास को जितना मारा उतना लोगों की निष्ठा बढ़ते गई हरिनाम. और उसके बाद कितने सारे हजार लोग भक्त बन गए, लाखों लोग. तो इस तरीके से ऐसे व्यक्तियों के बारे में, महान भक्तों के बारे में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की दृढ़ता, प्रहलाद महाराज की निष्ठा. और प्रैक्टिकली आज हमारे जीवन में हमसे जो भी थोड़ा ज्यादा श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, स्थित है, ऐसे लोगों से श्रवण करके, ज्यादा या नीचे, जब ऊपर से नीचे बहता है हमेशा, तो ऐसे जहां रहेंगे, जहां थोड़ा ज्यादा है तो अपने कुछ तो बहेगा, कुछ तो कलेक्ट हो जाएगा हमारे हृदय. ले सकते हैं क्वेश्चन, टाइम है एक, वन लास्ट. यस वृंदावन प्रभु, आप ही उसका उत्तर भी दे देना.
बुद्ध के बारे में बता रहे थे, वो इमरजेंसी थी, भगवान का उद्देश्य था कि वो आएंगे बुद्ध के रूप में और मास भक्षण बंद करेंगे. सिमिलरली देयर वाज इमरजेंसी नीड ऑफ शंकराचार्य, वी नो सो मेनी जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया, जो भी इमरजेंसी नीड था. लेकिन हम देखते हैं कि भगवान का ये उद्देश्य था कि ये चीज को बंद करना है और बस. लेकिन हम देखते हैं कि उसके परिणाम, वो तो भगवान ने उसको साध्य कर लिया कि पशु हत्या उस समय बंद होगी, लेकिन वो जो फिलोसॉफी का प्रचार हो गया उसका अभी भी इतना बड़ा परिणाम है, हजारों लाखों लोग उनकी शरण ले रहे हैं, कितने लोग मायावादी बन गए और मायावाद का शरण ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो बुद्धिस्ट, अभी इस हिंदू से भी ज्यादा संख्या बुद्धिस्ट का बढ़ रहा है. तो क्या वन नो वाई कृष्णा अरेंज
एक्चुअली
इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा? और अभी अभी हम ऐसा बोल सकते कि इट इज ऑल प्रिपरेशन फॉर चैतन्य महाप्रभु, फिर भी हमको कितना मुश्किल होता है, एक बुद्धिस्ट आदमी है अगर जिसने बुद्ध का शरण लिया है और उसको कृष्ण भावना में आना बहुत मुश्किल है. लेकिन जो पक्का मायावादी है वो मायावादी भक्त बनना बहुत मुश्किल है, उल्टा भक्तों को भी डिस्टर्ब कर सकता है मायावादी, सुने ले बादशाह हो ही न करना. तो क्या भगवान के अरेंजमेंट है, अगर वो यही साध्य करना चाहते क्या उसमें कुछ इम्परफेक्शन है क्या? चलो प्रश्न पूछ, भगवान को साध्य करना कि बुद्ध आएगा वो अवतार में हम पशु हत्या बंद करेंगे, ये आएंगे तो बुद्ध को बंद करेंगे, बुद्धिस्ट लोगों को शंकराचार्य डिफीट करेंगे. लेकिन हम देखेंगे अभी भी उसका जो, ऐसा नहीं कि वो हो गया, वो हो गया, अभी उसका इतना परिणाम है कि एक्चुअली बहुत ऑब्स्टेकल हो रहा है, कितने लोगों को वो दूर ले जा रहे हैं भगवान की कृपा से. तो भगवान का उद्देश्य कैसे?
एक्चुअली ऐसा नहीं है,
समथिंग लाइक येतामा प्रपद्यन्ते,
एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बुद्ध के अवतार से पहले बुद्धिज्म नहीं था, ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य आने से पहले मायावाद नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं ऐसा नहीं था कि नास्तिकवाद नहीं था। सारे वाद जैसा 84 लाख योनियां हमेशा है, हम 4 लाख देखते होंगे, पर ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब जगह है। इसी तरह से भगवान के शरण नहीं जाने का जितने सारे वाद है अलग अलग, उसको नाम अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने आके अपना नाम दिया, दिस इज्म दैट इज्म गांधी इज्म दिस इज्म, ये इज्म जो है उस व्यक्ति से जुड़ा जाता है, पर वो वाद हमेशा है। तो भगवान के शरण नहीं जाने के लिए, और अलग सूत्र महाराज कहते हैं डिफरेंट डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकम्स डिफरेंट फिलोसफी। सो जैसा 84 लाख योनियां हमेशा, अच्छा 84 लाख एक योनी क्यों नहीं है, और 83,99,999 नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने सारे जीव की इच्छाएं हैं वो 84 के अंदर सब फिट हो जाएंगे, बस उससे एक नहीं कम एक ज्यादा नहीं। इसी तरह से हमने 4-5 वाद सुना है, पर उसकी जो फाइनर मॉडिफिकेशन, न्यू बुद्धिज्म दिस बुद्धिज्म, हजारों वाद, सब प्रकार के वाद हमेशा रहा है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू समझता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं है, शरीर है, एंड दिस बॉडी इज ओनली मेड अप ऑफ केमिकल्स, तकलीफ क्या है, तो केमिकल मर रहा है ना, तो तू रोता क्यों है केमिकल मरने में, कितना फैक्ट्री में कितना केमिकल तो गटर में जाता है, तो रोता है क्या, तो अगर ये केमिकल है मर रहा है तो रोने देना, वो केमिकल मरेगा, ये केमिकल केमिकल है, केमिकल में जा रहा है बस। उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं दिस काइंड ऑफ फिलोसफी वॉज एग्जिस्टिंग इवन एट द टाइम ऑफ कृष्णा, लोकायतिकास एंड वैभाषिकास, तो ये था। पर जैसे जैसे वातावरण होती है वैसे वो वाद बढ़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे एक सुंदर उदाहरण दिया हमारे मदन गोपाल प्रभु ने, ये जगह अगर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाइए तो यहां सब सात्विक लोग इकट्ठा होंगे, और यही जगह एक बहुत बड़ा बार बना के खड़ा कर दो तो सारे तमगुण वाले यहां एकत्रित होंगे। तो जैसा वातावरण वैसे लोग आएंगे यहां। अभी यहां इसको खेती करके अच्छा अच्छा बीज डालो तो ऐसा ऐसे ही छोड़ दो तो सब वो कांग्रेस ग्रास आ जाएगा इधर। तो इस तरह से हमारे बगीचे में वहां कचरा, सब लोग सारा बिल्डिंग का कचरा वहां डाला करते थे, कौवे 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 बस कौवे थे उधर। अभी वहां गार्डन डाला, बहुत अच्छा वातावरण किया, तो तोते आते हैं, कबूतर तो इधर उधर आते रहते थोड़ा बहुत, कोयल और बहुत सारे अच्छे अच्छे तात्विक पक्षी आके सुंदर गाती। तो हमेशा हर प्रकार के जीव विथ डिफरेंट काइंड ऑफ डाउट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट। अच्छा, अब कोई एक व्यक्ति पावरफुल व्यक्ति आता है और उस वाद को प्रचार करता है तो ऐसे वाद सारे लोग वहां एकत्रित हो जाते, फिल्टर हो जाते अपने आप, और ऐसे लोग वहां एकत्रित होते तो डायरेक्टली यू कैन नो आहा उसकी चेतना क्या थी। अगर कौवे को सबको मिला के रख दो तो समझ में नहीं आता है, पर सिर्फ कचरा रखो तो सारे कौवे एक साइड हो जाएंगे, कबूतर एक जगह रह जाएंगे। तो ये दिस इज ऑल्सो ए वेरी क्लियर कट, या यू कैन इजिली सॉर्टिंग आउट एंड यू कैन फोकस ऑन होम टू फर्स्ट वर्क ऑन एंड देन यू स्लोली वर्क ऑन द अदर्स ऑल्सो। मतलब चालू रखो, इट्स एक्चुअली वन सेंस वन मच बेटर जस्ट बाय लुकिंग एट द साइन ऑन देयर हेड, यू नो व्हाट इज हिज कॉन्शियसनेस, देन यू कैन वर्क हाउ टू अप्रोच दैट पर्सन एग्जैक्टली, इट्स अ गुड थिंग। अगर कुछ नहीं होता, क्लियर चेहरा होता तो उसको समझने में 1 साल लगता उसकी चेतना क्या है। सो बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ तिलक्स ऑन द हेड और वट एवर फोरहेड, यू इमीडिएटली नो व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फेलो, व्हाट इज हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। जहां तक नास्तिकवाद है, प्रभु रामचंद्र को जावाली ने, तो त्रेता युग में भी था ये नास्तिकवाद, बट वेन राम चैस्टाइज्ड हिम, इसे नहीं नहीं प्रभु आपको किसी तरह से वन नहीं जाने के लिए सब बोलना पड़ा मेरे को, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। सो ऑल दीज वर्ड्स आर डिफरेंट डाउट्स अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दे आर गिवन बाई डिफरेंट नेम्स एंड दे बिकम प्रोपगेटेड बाई डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द थिंग, और उसको यूज करते हैं प्रभुपाद भगवान। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म कांड, कर्म मीमांस बोला इनको, नंद महाराज को, बोले क्यों? अरे छोड़ो ये सब, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की करो। बोले क्यों? क्योंकि अरे क्या समुद्र यज्ञ करते है क्या? पर इंद्र तो समुद्र में भी बारिश डालता है ना। अगर हम लोग अपना कर्म करेंगे तो फल देना ही पड़ेगा उनको, भगवान को। भगवान ने बोला ये बात, दैट वॉज एग्जिस्टिंग इवन देन, कर्म मीमांस थे। बट अकॉर्डिंग टू वॉट विल फैसिलिटेट फॉर पीपल टू फिल्टर आउट एंड कम टूवर्ड्स, जैसा यस ये बाईपास करना गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं है, पर जब मेन रोड टूट गया है तो क्षणिक थोड़ा समय के लिए बाईपास करो। अब फिर भी कुछ लोग हैं वो बाईपास का पूरा उपयोग करके करने दो, क्या करेंगे? ठीक है, बाईपास भी अंत में मेन रोड तो लाएगा ना, वो चलेगा, बाईपास है पर अंत तो वो मेन रोड में लाएगा। और दूसरा चीज है कि दैट्स ऑल द रीजन फॉर डिवोटीज टू प्रीच, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। प्रभुपाद ने एक बार कहा, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कूड हैव डन एवरीथिंग, भक्ति विनोद ठाकुर कूड हैव सिंगल हैंडेडली प्रीच द होल वर्ल्ड, बट ही लेफ्ट समथिंग फॉर अस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली काल के रूप में सब नष्ट कर सकते थे, फिर अर्जुन लड़ाई क्या करता, फिर हम लोग महाभारत क्या सुनते? इसलिए बोले अर्जुन तू कर, चलो तेरे लिए थोड़ा छोड़ा है मैंने, निमित्त मात्र में तो मार दिया ऑलरेडी, बट तू अभी तू चला, तू यश प्राप्त कर, लोग तेरे को पूजा करेंगे, तेरा गुणगान करेंगे तो मेरे को बहुत पसंद होगा, इसलिए तू कर। मैं तो करने, तू नहीं करेगा तो मैं करने ही वाला हूं, और मैं कर ही दिया हूं, तू यश ले इसका, मेरा यश तो हमेशा निश्चित है, और तू भी ले। सो अपनी बुद्धि से ये प्लान अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे क्यों ऐसा किया भगवान ने। ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश लगता है हमको, चार लोगों का उद्धार किया और 40 लोग अभी उसके पीछे पड़े हुए, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एवर द लॉर्ड डज, इट इज कृष्णस पर्सनल प्लान टू शयन शंकराचार्य। प्रचनन मयैव कल्पितं देवी कलौ ब्राह्मण रूपेण, उन्होंने आज्ञा दिया, खास तुम जाके, क्या उनको नहीं मालूम था उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिपरकशन होगा? था, पर उसके बावजूद भी किए। तो वो उनकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में समझ नहीं आता, वो 450 ग्राम में समझ नहीं आता कि ऐसा ऐसा क्यों किया। तो करने के बाद चैतन्य महाप्रभु आए तो पूरा सबको पढ़ने, सबको क्यों, हर एक जीव को बना के क्यों नहीं गए? इतना किए और वो 200 साल में बाद खत्म ही हो गया पूरा, पर सबके हृदय में वो चालू कर सकते थे, कृष्ण भावना को जागृत कर सकते थे, क्यों नहीं किए? ओ भगवान जाने, ऊपर जाने के बाद पूछेंगे। और अभी हम लोग जाएंगे और जितने लोग को साथ में ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे बस। बहुत मुश्किल है अपनी बुद्धि से भगवान को समझना और भगवान की योजना को। भीष्म पितामह कहते हैं, आपकी पांडव लोग पूरे जान दिए और उनको तकलीफ ही तकलीफ जीवन में, प्रभु ये मैं 100% समझ। अच्छा, वो धर्मिष्ठ है, वो आप ही उनके साथ हमेशा रहते, 24 घंटे आप उनके साथ रहते हो, फिर भी उनको तकलीफ ही तकलीफ। तो इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि दिस इज इनकंसीवेबल। महाजन कह रहे, महाजन कह रहे, हम क्या जाने, लो भगवान को छोड़ दो, हम अपना काम करेंगे। आई डोंट नो whether आई answered योर क्वेश्चन सैटिस्फैक्टरी, when आई गेट द आंसर आई विल टेल यू। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदी। Thank you.